CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 का 14वां पाठ मुफ्त ही मुफ्त पृष्ठ संख्या 114 से 125 तक पृष्ठ 114 गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त रचनाकार ममता पांड्या अनुवाद संध्या राव।
एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा।
आहा, वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा।
लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था।
ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा।
उन्होंने अपनी पत्नी लाभुबेन से कहा। लाभुबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा।
पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
लाभुबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे।
क्या करूं, मैं क्या करूं?
पृष्ठ 115।
मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभुबेन से बोले,
अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं।
जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए।
ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे?
भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा,
बस 2 रुपए में काका।
बस 2 रुपए?
भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा।
बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो।
नारियल वाले ने कहा,
ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो।
ठीक है ठीक है,
भीखू भाई बड़बड़ाए।
अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा?
नारियल वाले ने कहा,
यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए।
सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े।
चलो देख लेते हैं।
वे अपने आप से बोले,
पृष्ठ 116।
टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी।
खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं।
बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी।
माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका, नारियल वाले को देखकर पूछा,
अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे?
सिर्फ 1 रुपया काका।
नारियल वाले ने जवाब दिया,
जो चाहे ले जाओ जल्दी।
शू छे भाई,
भीखू भाई ने कहा।
यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे।
नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला,
माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं।
लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला,
बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए।
शब्द शूछे, अर्थ क्या है?
पृष्ठ 117।
भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे।
आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है।
पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे।
अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे?
भीखू भाई ने पूछा और कहा,
ये तो काफी अच्छे दिखते हैं।
काका, यहाँ कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे।
नाव वाले ने कहा।
है? 50 पैसे?
भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए।
अरे, इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो।
ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा,
नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा।
थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला,
नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मन पसंद दाम में।
पृष्ठ 118।
भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया,
इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्जी क्या है।
सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा,
2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है।
भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा,
यह नारियल कितने में बेचोगे?
पृष्ठ 119।
माली ने जवाब दिया,
जो पसंद आए ले जाओ। काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं।
हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, 1 नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूं।
भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा,
अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं।
सच? जितना चाहूं ले लूं?
भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाए।
मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया।
उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा,
बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है।
भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक! पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया।
पृष्ठ 120।
उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए।
ओ माँ, अब मैं क्या करूं?
भीखू भाई चिल्लाने लगे,
अरे भाई मदद करो।
उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा।
वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीज का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त।
तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा।
अरे ओ ओ ओ भाई,
भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे।
ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी।
ऊंट वाले ने सोचा,
चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है।
ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घुड़सवार आया।
पृष्ठ 121।
अरे सामरो छो,
पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे।
सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ।
घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी।
ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो।
एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ।
यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक, दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से।
काका काका, कसके पकड़े रहना। हाँ,
घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा।
जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका,
अब ऊंट वाले की बारी थी।
मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं।
हैं? 100 और 200? बाप रे बाप, 300 रुपए!
भीखू भाई का सिर चकरा गया।
इतना इतना सारा पैसा!
खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त।
शब्द सांभला, अर्थ संभालो। पृष्ठ 122। अभ्यास तुम्हारी समझ।
क, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों?
ख, हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था?
ग, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों?
घ, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा?
भीखू भाई ऐसे थे।
कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ।
क, उन्हें खाने पीने का शौक था।
ख, रिक्त स्थान।
ग, रिक्त स्थान।
घ, रिक्त स्थान।
ङ, रिक्त स्थान।
क्या बढ़ा क्या घटा।
कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े?
नारियल का दाम रिक्त स्थान,
भीखू भाई का लालच, रिक्त स्थान,
रास्ते की लंबाई, रिक्त स्थान,
भीखू भाई की थकान, रिक्त स्थान।
पृष्ठ 123, कहो कहानी।
यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ।
बात की बात।
कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो।
शब्दों की बात।
नाना नानी, पतीली पतीला। यहां दिए गए उदाहरणों की मदद से सही शब्द लिखो। काका, रिक्त स्थान।
दर्जी, रिक्त स्थान।
मालिन, रिक्त स्थान।
टोकरी, रिक्त स्थान।
मटका, रिक्त स्थान।
गद्दा, रिक्त स्थान।
पृष्ठ 124, मंडी।
मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं।
क, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा।
ख, मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ग, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो।
पृष्ठ 125, गुजरात की झलक।
क, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो।
ख, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बेन अर्थात बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
इसी के साथ रिमझिम भाग 4 का 14वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।